हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेल, तभी अचानक अमन ने एक बार फिर शहर के ऊंचे बड़े बिल्डिंग पर जाकर अपनी गहरी नजरों से चारों ओर देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि अमन अपनी जिन महाराज वाली जादुई नजरों का यूज किया करता था। जब से अमन जिन महाराज बना था, तब से उसे दूरदर्शिता की शक्ति तक मिल चुकी थी, जिसकी वजह से जहां जहां उसके जिन्नात, जो कि प्रिकली कर थे, वो सभी उसे दिख जाया करते थे, और जल्दी ही उसने अपनी सभी जिन्नातों को अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था। और अचानक एक छोटी सी बच्ची पर जाकर अमन जिन महाराज की आंखें ठहर गई थीं। अमन काफी ज्यादा हैरान था कि एक छोटी सी बच्ची पर भला उसकी नजरें क्यों ठहर गई थीं, जबकि उसका वहां तो कोई जिन भी नहीं था। अमन को काफी हैरानी हुई। हालांकि उन्हें जादुई नजरों का उसे किया था, उसने सोचा कि शायद जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई है, इसीलिए अमन ने एक बार फिर से अपनी जादुई नजरों को घुमाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी उसने अपनी नजरों को घुमाया, एक बार फिर उसकी नजर जाकर उस छोटी सी बच्ची पर ठहर गई। अब अमन काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गया था। तब उसने सोचा कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, और उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो भी नॉर्मल नहीं है, तो इसीलिए अमन ने अब छोटी सी बच्ची से मिलने का फैसला कर लिया था। और जल्दी ही वो गायब होकर एक नॉर्मल इंसान के रूप में वहां पहुंच चुका था। अमन जल्दी से छोटी सी बच्ची के पास गया था, और जैसे ही उसके पास गया, उसने देखा छोटी सी बच्ची के शरीर पर कितने ही सारे ऐसे अजीब से निशान थे, जिनमें बहुत ही बुरी बदबू सी आ रही थी। इतना ही नहीं, अमन ने देखा उसे लड़की के परिवार वालों का घर बहुत ही बड़ा शानदार था, लेकिन उसे बच्चों को उन्होंने अपने घर परिवार से दूर एक छोटे से झोपड़ी में रखा हुआ था। अमन का हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था, और उस बच्ची को कुछ देर दूर से देखने के बाद अमन ने उसे बच्ची के घर जाने का फैसला कर लिया था। इसीलिए वो एक नॉर्मल इंसान के वेश में उस लड़की के घर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने उसे घर की बेल बजाई, उसमें से एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला था। अमन ने उसे देखते हुए कहा था, जी मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? तब उस आदमी ने अमन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था। अमन देखने में कोई मिडिल क्लास घर का आदमी लग रहा था, तो इसीलिए उसे आदमी ने अमन से कहा था, ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आकर बैठकर इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने घर के बने छोटे से हाल में उसे एक छोटे से कमरे में उसे बैठने के लिए कह दिया था। अमन उस कमरे को देखकर अंदाजा लगा चुका था कि शायद ये कमरा नौकरी वगैरह के लिए था। अमन जैसे ही वहां बैठा, तभी वो आदमी गिलास में पानी लेकर आ गया था। अमन ने उसके हाथ से पानी ले लिया था और इधर उधर देखने लगा था। तभी वो आदमी अमन को गहरी नजरों से देखता हुआ बोला था, तुम हो कौन और इस तरह से पूरे घर पर अपनी नजरें क्यों घुमा रहे हो? जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, अमन अब थोड़ा सा हड़बड़ा गया और कहने लगा था, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो नॉर्मल आपका घर देख रहा हूँ, अच्छा घर बनाया है आपने। जैसे ही अमन ने ये कहा, अचानक न जाने उस आदमी को क्या हुआ, उसने गुस्से से अमन का गिरबान पकड़ लिया था और कहने लगा था, कौन हो तुम, साफ साफ बताओ, और इस तरह से मेरे घर में आकर तहकीकात करने का क्या मतलब है? जैसे ही उसे आदमी ने इस तरह से अमन से बात की, अमन हैरान हो गया था कि आखिरकार इस आदमी को हुआ क्या है और वो उसे इस तरह से क्यों बात कर रहा है। तभी अमन ने उस आदमी को समझाने की एक बार और कोशिश की थी और कहने लगा था कि शायद तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी इस गली के बाहर छोटे से झोपड़ी में क्यों रहती है, जबकि वो तो छोटी बच्ची है, वो अपना अकेली ध्यान कैसे रखती होगी? जैसे ही अमन ने इस तरह से उस आदमी से पूछा, उसे आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया था, उसने खींचकर एक चांटा अमन के मुंह पर दे मारा था और कहने लगा था, कौन हो तुम, साफ साफ बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे घर में बैठकर उस मनहूस के बारे में बात करने की? जैसे ही वो आदमी जोरों से चिल्लाया, अचानक से उस आदमी का पूरा परिवार वहां आ गया था, और अमन ने देखा कि उसमें एक बड़ी बेटी थी जो काफी दिखने में अच्छी थी। इतना ही नहीं, दूसरे उस आदमी की पत्नी, साथ ही साथ एक बेटा और बूढ़े दादा दादी, ये सब वहां आ गए। तब वो आकर अपने पति को रोकने लगी थी और कहने लगी थी, आप इस तरह से आदमी को क्यों मार रहे हैं? तभी उसे आदमी ने अमन की ओर इशारा करते हुए कहा था, ये आदमी यहाँ आकर उस मनहूस लड़की के बारे में पूछ रहा है और तुम कह रही हो कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ? अभी जैसे ही उसने अपनी पत्नी से ये कहा, अचानक से उसकी पत्नी की आंखें भर आई थीं और अपने पति की ओर देखकर कहने लगी थी कि आप इसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, लगता है किसी ने इसे हमारी बेटी के बारे में बता दिया हो गया है, इसीलिए यहाँ पूछने के लिए आ गया है। तभी अमन हैरान होते हुए उसकी ओर देखते हुए कहने लगा था, आखिरकार ये क्या कह रही हैं आप, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों ने अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से उसे घर से दूर क्यों रखा हुआ है? जैसे ही अमन ने यह सवाल किया, उसे आदमी का गुस्सा और भी बढ़ गया था और कहने लगा था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हमने तुम्हें कहा ना, उस मनहूस के बारे में हमारे घर में बात करना भी मना है, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? तब अचानक अमन ने खींच कर एक उल्टे हाथ का चांटा उसके बाप के मुंह पर दे मारा था। अब वो जो कितने ज्यादा तेज चिल्ला रहा था, भड़क रहा था, एकदम से ही चुप और शांत हो गया था। तभी अमन ने अपना एक कार्ड आगे निकालकर उसे दिखा दिया था और कहने लगा था, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी बात छुपाने की कोशिश की तो तुम सबको अंदर करवा दूंगा। अमन ने जानबूझकर अपनी जादू के द्वारा एक झूठा फेक आईडी कार्ड उसे दिखाया था, जिससे वो आदमी अब डर कर रह गया था और कहने लगा था, देखिए साहब, मैं नहीं जानता कि आपको लोगों ने क्या कहा है और क्या सुनकर आप यहाँ आ गए हैं, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, उस लड़की का हमारे इस घर से कोई लेना देना नहीं और मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगा, चाहे तुम मुझे जिंदगी भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे ही क्यों ना भेज दो। जैसे ही उस आदमी के मन में उसकी बेटी के लिए अमन ने इतनी नफरत देखी तो वो चौंक गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उस घर में कोई जिन्न उसे दिखाई दे रहा था। अमन का हैरानी के मारे बुरा हाल था। तभी अचानक अमन ने थोड़े से नरम स्वभाव में उसकी माँ की ओर देखते हुए पूछा था, क्या मैं जान सकता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या बड़ा क्राइम कर दिया है कि आप लोगों ने उसे इस तरह से सजा दे रखी है? तभी अचानक उसकी माँ हिचकी बांधकर रोने लगी थी और कहने लगी थी, मैं बताती हूँ आपको, आप ये इधर ऐसा क्या करा। वो उसे सर्वेंट वाले कमरे से अमन को एक शानदार हाल में ले गई थी और उसे वहां बैठा दिया था और कहने लगी थी, मेरी बच्ची अब से पहले ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी बड़ी ही खूबसूरत और सुंदर हुआ करती थी।
इतना ही नहीं, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करती थी। न जाने मेरी बच्ची को, हंसती खेलती बच्ची को किसकी नजर लग गई। धीरे धीरे उसने अपने घर पर सभी से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अपने पिता पर उसने हाथ कितनी बार हाथ उठा लिया था और मेरी बच्ची जो कि अब कुल 12-13 साल की लड़की दिखती है। पहले मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, ये बड़ी ही नहीं हुई, ये आज भी 12-13 साल की ही दिखती है, जबकि ये जो मेरी बेटी देख रहे हैं इसकी उम्र 19 साल है और मेरी बेटी, वो बेटी इससे 2 साल बड़ी है, यानी कि वो 21 साल की है। क्या? या। जैसे ही अमन ने ये सुना वो हैरान हो गया था और कहने लगा था, आप अपनी 12 साल की बेटी को 21 साल की बता रही हैं और आप कह रही हैं जो आपकी ये बेटी खड़ी हुई है इससे वो बड़ी है? तभी वो औरत अमन की ओर देखते हुए बोली थी, जी हाँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं ठीक कह रही हूँ। अचानक से मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि जिससे उम्र छोटी होती चली गई। हमने कितने ही सारे डॉक्टर बदल लिए, हर डॉक्टर को उसे दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण नहीं पता लगा पा रहा था। और देखते ही देखते वो 13 साल की छोटी बच्ची ही बनकर रह गई और उसके शरीर पर अजीब अजीब तरह के निशान भर गए। इतना ही नहीं, इसमें से इतनी बुरी बदबू आती है कि कोई भी उसे अपने पास रखना तो क्या, उसे देखना तक पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, कैसे मैं अपनी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल सकती थी? लेकिन मैं भी परिवार के आगे मजबूर हो गई थी। तब मेरे रोने गिड़गिड़ाने पर मेरे पति ने उसके लिए एक झोपड़ी तैयार की और वहां वो रहती है। मैं सुबह शाम उसके पास जाती हूँ, उसे खाना देकर आती हूँ और वो मुझे बदले में कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप मेरे हाथ से खाने की थाली ले लेती है और मैं उल्टे पांव वापस आ जाती हूँ, क्योंकि उसमें से इतनी बुरी बदबू आती है कि ज्यादा देर मैं भी इसकी बदबू का ताप मैं भी नहीं झेल पाती हूँ और मैं भी बस जल्द से जल्द खाना देकर वापस आ जाती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने ये सब बताया, अमन हैरान हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसी कौन सी बीमारी थी जो किसी की उम्र बढ़ाने की बजाय घटा सकती थी, और वो भी इतनी, एक अच्छी खासी जवान लड़की कल 12-13 साल की बच्ची बनकर रह गई थी। अमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेल, तभी अमन ने उसके पिता की ओर देखा था। उसका पिता अब अपना सर झुकाए हुए खड़ा हुआ था। तब अमन उसके पास गए थे और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा था, मैं नहीं जानता कि अचानक से आपके हंसते खेलते परिवार को क्या हुआ है, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकूं। जैसे ही अमन ने ये कहा, अचानक से उसके पिता की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे और जो अपने जज्बात उसने इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रख रखे थे, अचानक से ही वो बाहर निकल पड़े थे और वो बुरी तरह से रोने लगे थे और कहने लगे थे, मुझे अपनी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते मेरी बेटी मेरी जिंदगी थी, मेरा गुरूर था, मेरा फक्र थी, और जब से मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं चिल्लाता हूँ, गुस्सा रहता हूँ, मेरा पत्थर दिल एकदम पत्थर दिल बन चुका है। और जब लोग मुझे जाकर ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी से बदबू आ रही है, उसे उठाकर फेंक दो, उसका गला क्यों नहीं दबा देते, उसे दफना क्यों नहीं कर देते हो, तुम नहीं जानते उस वक्त मुझ पर भी क्या गुजरती है। और आज जब तुम मेरी बेटी के बारे में इंक्वायरी करने आए, तब भी मुझे यही लगा कि शायद तुम भी मुझे यही कहने के लिए आए हो कि मैं अपनी बेटी का गला दबाकर मार दूं, उसे दफना दूं। लेकिन आज पहली बार इन 12 सालों में कोई ऐसा आया है जिसने कहा है कि वो मेरी बेटी को ठीक कर देगा, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर हाथ उठाया। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से रोने लगा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश करने लगा था कि आपको इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपकी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अमन जल्दी ही उन लोगों से इजाजत लेकर उसकी बेटी के पास जाने लगा था। लेकिन तभी वो आदमी बोला था, रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को इशारा किया था और अपने बच्चे और बूढ़े दादा दादी को वहीं छोड़कर वो भी अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के पास जाने लगे थे। और जैसे वो उस झोपड़ी के अंदर गए तो वाकई उसमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। लेकिन वो बदबू अमन को कुछ जानी पहचानी सी लगी थी, इसीलिए अमन उस बदबू का सहन करता रहा, वो झोपड़ी के अंदर चला गया था। और जैसे ही उस बच्ची ने ये देखा कि उस झोपड़ी के अंदर कोई आया है, तो वो हैरान हो गई थी। उस लड़की का नाम श्रेया था। श्रेया ने जैसे ही ये देखा कि उसकी झोपड़ी में पहली बार कोई आया है, तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि आज तक इतने सालों में कोई बच्चा तक उसकी झोपड़ी में नहीं आया करता था। इतने ही नहीं, किसी बच्चे की खेलती हुई बॉल, गेंद वगैरह वहां चली जाया करती थी, तो भी वो लोग उसकी झोपड़ी में से वो गेंद तक लेना पसंद नहीं किया करते थे।